मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 18 जून 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन यंग फ्रेंड्स के नाम हैं प्रशांत कुमार जो सतारा पटना से हैं, शैलजा भाले राव मालेगांव नासिक से हैं, शैलेश कुमार नालंदा से, विनीत दीक्षित शिवपुर मध्य प्रदेश से, शुभांशु साहू कानपुर से और मनीष कुमार ध्रुव कांकेर छत्तीसगढ़ से। प्रशांत, शैलजा, शैलेश, विनीत, शुभांश और मनीष, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे ये कारवां बड़ा होता जा रहा है। निश्चित रूप से जब कारवां बड़ा होगा और बड़ा कारवां जब 15 दिन के लिए एक स्थान पर जुटेगा तो कुछ ना कुछ वो बड़ा ही करेगा, इस बात का एश्योरेंस मैं एकेडमी की तरफ से आप सबको दिला सकता हूं। और बट नेचुरल है कि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ इसी तरह का एश्योरेंस चाहिए होगा और वो एश्योरेंस यह होगा कि हां, आप पूरे मुक्त मन से, पूरे खुले मन से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां आएंगे और अपने ये पूरे के पूरे 15 दिन पूरी तरह से इस एकेडमी द्वारा चाही गई पद्धति के अनुकूल उसे देंगे। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वह बड़ा काम संपन्न होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरा गला काफी खराब है, मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह से मैं इसे पूरा करूं, लेकिन गले की खराबी के कारण जो इसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसे थोड़ा आप अन्यथा न लेंगे, उसे माफ करके चलेंगे, लेकिन किसी तरह से चूंकि ये प्रोग्राम पूरा करना है तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखें बजाय इसके कि फिलहाल इसके साउंड की जो क्वालिटी होती है उस पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मोटिवेशन वाले पार्ट पर। सच पूछे तो आज के मोटिवेशन के लिए मैंने जो विषय चुना है वो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और आप लोगों को तो खासकर वो विषय इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूं, मैं चाहूंगा कि मेरे विचारों को जानने से पहले आप कुछ जो मैं यहां प्रश्न खड़े कर रहा हूं उनके उत्तर अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करें और इसके लिए थोड़ी देर तक हो सके तो इस ऑडियो गाइडेंस को बंद कर दें। पहली बात तो यह कि इस फिल्म से यदि आपसे कहा जाए कि आप क्या मैसेज देश को देना चाहेंगे, दुनिया को देना चाहेंगे, तो वो मैसेज क्या होगा? आपने ये फिल्म देखी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने देखी होगी, आप इससे क्या मैसेज निकालेंगे? पहली बात तो आप अपनी तरफ से यह निर्धारित कर लीजिए। दूसरी बात कि मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि इस फिल्म से आप अपने ऐसे के लिए क्या कंटेंट निकाल पाएंगे तो वह क्या होगा? हालांकि आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत होगी कि मैं जिस ऐसे की बात कर रहा हूं तो उस ऐसे का सब्जेक्ट क्या होगा। लीजिए मैं सब्जेक्ट भी बताता हूं और बड़ा उटपटांग सा सब्जेक्ट है और शायद इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि भला इसका भी इस फिल्म से कोई रिलेशन हो सकता है। मान लीजिए कि आपको ऐसे लिखने को दिया गया आर्थिक उदारीकरण का वैश्विक प्रभाव, यह सिंपल सा ऐसे दिया गया है, या आर्थिक उदारीकरण के बिल्कुल वाइस वर्षा पनपती हुई विश्व संस्कृति, या यह भी दिया जा सकता है कि विश्व संस्कृति बनाम लोक संस्कृति। इस तरह से कोई भी विषय, ढेर सारे विषय इस तरह से जुड़े हुए दिए जा सकते हैं। तो क्या आप तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म के कुछ हिस्सों को या इसको आधार बनाकर इसके कुछ कंटेंट का इस्तेमाल आप अपने निबंध में कर सकते हैं? ये दो छोटे छोटे प्रश्न इससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे आगे चलकर सुने। मित्रों, ये जो मैं नई टेक्निक आपसे इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे जो ऑडियो गाइडेंस के जो श्रोता हैं, उसमें से सबसे बड़ी संख्या उन श्रोताओं की है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या श्रोताओं की है जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद वो ऑडियो गाइडेंस सुनते हैं। और इसमें ऐसे नामों में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नाम कल मिला है, और वो नाम है हसद अहमद साहब का, जो दोहा से हैं, कतर जो देश में दोहा, और उन्होंने लिखा है, मेल भेजा है कि वो आईएएस की तैयारी नहीं करते लेकिन इस ऑडियो गाइडेंस को वो कभी मिस नहीं करते, और इसके लिए उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी है, बहुत प्रशंसा की है, बहुत आभार व्यक्त किया है। तो हसद अहमद जी, मैं अपनी ओर से और अपने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपके इन शब्दों के प्रति अपना बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो शब्द लिखे हैं वो हम लोगों के लिए ऊर्जा का काम करेंगे, और निश्चित रूप से इससे हम इसे और भी अधिक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, यह प्रेरणा हमें मिलेगी। तो मित्रों, यदि मैं सिविल सर्विस के श्रोताओं की ही बात को ध्यान में रखूं, उनकी जरूरत को ध्यान में रखूं, तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है कि उनके अंदर एक पावर ऑफ एनालिसिस डेवलप हो। हालांकि जो जीवन में भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पावर ऑफ एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम सही निर्णय ले सकेंगे। बिना पावर ऑफ एनालिसिस के कभी भी सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में ये मैंने दो प्रश्न आपसे पूछे हैं ताकि आप एक तरह से अपना मूल्यांकन कर सकें कि जिस पावर ऑफ एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं उसके कितने करीब आप पहुंचे हैं। देखिए, सुनने का काम तो आप रोजाना करते ही होंगे या कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसको सुनने के बाद आप कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी कर रहे हैं, आप में क्षमता कितनी आ रही है, यह मुझे लगता है कि सुनने से भी ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों, इसके बारे में आप सोचिए, जो छोटे छोटे दो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। और अब मैं तनु वेट्स बनु रिटर्न के बारे में अपनी थोड़ी सी बातें कहने चाह रहा हूं। ये फिल्म हम लोगों ने न्यूयॉर्क में देखी थी। देखने वालों में मैं था, मेरी पत्नी थी और 5 अन्य महिलाएं थी जो न्यूयॉर्क इंडियन से थे लेकिन न्यूयॉर्क में रह रहे थे। इन हम 7 लोगों ने ये फिल्में देखी। और मजेदार बात है कि शायद उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी करीब 500 के लोगों की तो होगी ही, और जिस समय हम लोगों ने एंटर किया हॉल के अंदर, केवल 2 महिलाएं और बैठी हुई थी, बाकी पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था, यानी कि कुल देखने वालों की संख्या 9 थी। जब हम हॉल से बाहर निकले तो सही मायने में जो टोटल संख्या थी वो 9 लोगों की थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं उसे आप बाद में समझ पाएंगे कि यह डिस्क्रिप्शन में क्यों दे रहा हूं। मित्रों, तनु वेट्स मनु रिटर्न नो डाउट इंडिया में बहुत कमाल कर रही है, सुपरहिट फिल्म आ रही है, करोड़ों का उसका व्यापार हो रहा है। फॉरेन में कितना का वो सफल हो पा रही है इसके डेटा अभी मेरे पास नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है, और मुझे विश्वास है कि जब एक फिल्म की हाइप बन जाती है तो हमें देखने के लिए प्रेरित करती है, और इसी भरोसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आप लोगों ने भी यह फिल्म जरूर देखी होगी। मैं अब नहीं कहना चाहता कि ये फिल्म मुझे कैसे लगी, उसका कोई महत्व नहीं है। अब मैं उन तत्वों की बात करूंगा कि जो मैंने अभी आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब जिससे आपको मिल सके। पहला ये कि इस फिल्म का मैसेज क्या है, और दूसरा निबंध में आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मित्र, जब हम ये फिल्म देख रहे थे तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि जो वहां रहने वाली जो महिलाएं हैं और हम जो पति पत्नी थे, उनके फिल्म के देखने के नजरिए में बिल्कुल अंतर था। और मैं आपको यह भी यहां बता दूं कि जो वहां लोग रह रहे थे उसमें से कोई भी रहने वाला 25 साल से कम वक्त से वहां नहीं रह रहा था, मतलब उनको वहां रहते हुए 25 साल तो लगभग हो ही गए थे। अब आप देखिए कि तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म की पूरी जो खूबी है, जो उसका सेंट्रल पॉइंट है, जो मैसेज है, वो है क्या। दोस्तों, मुझे जो लगा, व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं, यदि मुझसे ये 2 प्रश्न पूछे जाएं तो मैं क्या जवाब दूंगा, और आपके अपने उत्तर हो सकते हैं, और अपने उत्तर अगर आप तार्किक रूप से रख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो आप भी उतने ही सही होंगे। ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो उत्तर देने जा रहा हूं वही एकमात्र सत्य है, नॉट एट ऑल। आपके भी उत्तर अपने ढंग से सच हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे प्रूफ कर सकें। फ्रेंड्स, इस पूरी की पूरी फिल्म में है क्या, सच पूछे तो कुछ भी नहीं है, केवल एक बात है जो मुझे लगी, वो ये है कि एक पति पत्नी है जो इंग्लैंड चले जाते हैं। पत्नी थोड़ी सी आप देखते हैं कि कुछ मॉडर्न आउटलुक की है, कुछ आपको लगेगा कि हाइपर भी है, और कुछ लगेगा कि वो लिबरेज, जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता होती है, जो स्वच्छंदता होती है, जो महिला आंदोलन है उसकी समर्थक भी है, वो एक अलग तरीके के आउटलुक की है। और उसमें नाम भी स्पेशली दिया है कि कानपुर, और वो पहुंच जाती सीधे लंदन पति से शादी करके। तो यहां कानपुर क्यों है आपको ध्यान देना होगा, यानी कि कानपुर वो स्थानीयता है, एक लोकल लेवल का कल्चर है। इसीलिए आपने देखा है कि कानपुर की संस्कृति को काफी बुना गया है ना। एक लड़का है जो उनके यहां LLB करके और उनके कमरे को हथिया लेता है, वो उसकी भाषा देखिए, इसके बाद वो जिससे पहले प्रेम करती है, जिससे शादी भी करना चाहती है, उसकी भाषा देखिए। फिर एक जो अपने भाई, किसी भाई को छुड़ाने के लिए जो लंदन जाता है, जो और किसी से प्रेम करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसकी भाषा को देखिए। वहां की पूरी बुनावट आप देखेंगे तो उस पूरी की पूरी बुनावट में आपको एक लोकल कल्चर दिखाई देगा, जो कानपुर का कल्चर है, जो यूपी के एक भाग हिस्से का कल्चर है। और इस लड़की के साथ ये है, जो नायिका है, जो कंगना रनौत जिनको आप कहें, हम इनके नाम से जानते हैं, उसकी जो चेतना है, उस चेतना में कहीं ना कहीं एक वैश्विक संस्कृति की बात है कि महिलाएं पुरुषों के क्यों गुलाम में रहें और फलाना फलाना इस तरह की चीजें हैं। और अपने लेवल पर वो, एक लेवल पर वो सही भी है। सवाल ये नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, सवाल ये होता है कि वो किस संदर्भ में आप उस बात को कह रहे हैं। और सच पूछे तो पूरी फिल्म में इसी बात का द्वंद है, और इस बात का द्वंद उस डॉक्टर में नहीं है, माधवन में नहीं है, वो तो बहुत स्पष्ट है। उसमें अपने जो वैश्विक संस्कृति है, या कह लीजिए जो अमेरिकन संस्कृति है, या जो इंग्लैंड की संस्कृति है, उसके प्रति कोई मोह नहीं है। वो भारतीय संस्कृति के प्रति ही झुकाव रखता है, क्योंकि वो उसकी चेतना उसी से बनी हुई है। जो प्रॉब्लम है जो चेतना की, वो नायिका में है। और आप देखते हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा डॉक्टर फिर से उसी शक्ल सूरत वाली एक लड़की से प्रभावित होता है, उसके प्रेम में पड़ता है, और उससे विवाह भी करने को बिल्कुल तैयारी चल रही है। और कंगना रनौत भी अब आपको यहां संदेश दिखाई देगा कि जो मूल जो चेतना है उससे उबर नहीं पाती। बार बार ये द्वंद्व चल रहे हैं कि तलाक होगा, ये होगा, पसंद नहीं किया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो उससे उबर नहीं पाती, पूरी शादी में मौजूद रहती है। और छठवें फेरे के बाद, जब सातवां फेरा पूरा होने को होता है, माधवन भी कह देता है, जिससे शादी हो रही है उस लड़की के पूछे जाने पर, कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं हो सकेगा। और फिर दोनों आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। दोस्तों, ये है भारतीय संस्कृति, मानवीय संवेदना। और इसका एक बहुत एक विचित्र सी बात है कि यही लड़की पहले किसी दूसरे से प्यार कर रही थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी, और शादी इससे होती है। हम दिल दे चुके सनम एक फिल्म आई थी, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, उसमें भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से थी, लेकिन उसका फैब्रिकेशन अलग था, उसकी बुनावट अलग थी। तो मित्रों, कुल मिलाकर के इस फिल्म का जो मैसेज है वो ये है कि यदि हम अपनी चेतना को अपनी संस्कृति से परे ले जाकर के किसी दूसरे खांचे में फिट करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक आंतरिक दबाव, एक आंतरिक तनाव फैलेगा। और वो जो आंतरिक दबाव होगा, जो आंतरिक तनाव होगा, वो हमें न तो यहां का रहने देगा और न ही वहां का रहने देगा। मित्रों, जो हम विश्व आर्थिकरण की बात करते हैं, विश्व बाजार की बात करते हैं, ठीक है कि हमारे जो हमारा जो सिर हो वो आसमान तक ऊंचा हो, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जो हमारे पैर हैं वो धरती पर ही होने चाहिए, क्योंकि ठोस पन तो बिना धरती के नहीं आ सकता। भले ही हम विश्व संस्कृति के जो बहुत ही जो मूल्यवान तत्व हैं उन्हें स्वीकार करें, भले ही क्या मतलब, उन्हें स्वीकार किया ही जाना चाहिए, जिसमें मित्रता की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, समानता की भावना है, डेमोक्रेसी की भावना है, सहायता करने की भावना है, लेकिन जो संस्कृति के जो छोटे छोटे तत्व हैं उसे स्वीकार किया ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना बनी ही इससे है। तो मित्रों, ये बात मैं खासकर आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि जब हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार कह लीजिए, जब संस्कार के तहत किसी भी काम को करते हैं, किसी भी बात के बारे में सोचते हैं, तो उससे हमें जो ताकत मिलती है वो वैश्विक स्तर की बातों से नहीं मिल सकती। तो मित्रों, आज के मोटिवेशन में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, और वो है AIR न्यूज का स्टेज। फ्रेंड्स, कल के एआईआर न्यूज को आपने सुना होगा और आपको उस एआईआर न्यूज में, खासकर अगर हम सिविल सर्विस के पॉइंट के तहत बात करें, तो कोई बहुत अधिक बातें आपको जानने को नहीं मिली होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर थीं जो बहुत इंपॉर्टेंट थीं, और वो केवल एक दोहराने के रूप में थीं, एक रिमाइंड कराने के रूप में थीं। और आप मान करके चलिए, पहले भी मैं ये बात आपसे बार बार कह चुका हूं कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं टोटल, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, टॉपिक्स थोड़े से ही होते हैं। हालांकि जब आप जनरल स्टडीज का सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि बाप रे, इसमें तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अंतरिक्ष का फैलाव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूज भी आप देखेंगे कि उन्हीं को लेकर के बनती है, और वही न्यूज आगे पीछे बार बार, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी एक्सटेंडेड फॉर्म में, कभी न्यू कंटेंट के रूप में लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। जिस दिन आप इस सत्य को समझ लेंगे, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने की सबसे बड़ी टेक्निक आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे यदि हम कल के एआईआर न्यूज के बारे में बात करें, तो एक जो सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी कि खरीफ फसलों की और दालों की कीमतों में सरकार ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अगर आपको ध्यान हो फ्रेंड्स, तो इससे काफी पहले, मेरी समझ से शायद लगभग 3 सप्ताह पहले की बात होगी, मैंने भारतीय कृषि व्यवस्था की चर्चा करते हुए, और खासकर इस पर जो एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच को मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने स्पेशली एक बात रखी थी, और इस पर मैंने क्लिपिंग्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की थी, देवेंद्र शर्मा जी की क्लिपिंग्स थी, जिसमें उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया था कि 1980 के बाद से अब तक जो खाद्यान्न है, जो किसान उत्पादित कर रहे हैं, जैसे गेहूं और चावल, इनमें केवल 18 गुना, इनकी कीमत में 18 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें लगभग 100 से 150 गुना वृद्धि हुई है। और ये किसानों के किसानों के नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों लोग अपनी खेती छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इनके न्यूनतम लागत मूल्य बढ़ाए। हालांकि सीधे सीधे सरकार उसी अनुपात में नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके फिर दूसरे रिपरकेशंस बहुत होंगे, उसकी चर्चा भी मैंने उस समय की थी, यहां मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन न्यूज में आपने ये बात जरूर देखी कि धान के मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और दालों में जो है 200 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का फैसला किया गया है। तो ये एक फैसला, स्वागत योग्य फैसला है। इसी में मित्रों, जो एक बहुत अच्छा जो डेटा आया था, जो एक आंकड़ा था जो आपके ध्यान में होना चाहिए, या आप इसे नोट भी कर सकते हैं, या आपके काम आ सकता है, कि हमारे यहाँ जो हर साल जो दाल की डिमांड है वो है लगभग 225 से 230 लाख टन ये है, और हमारे दोस्त अभी जो हमारा जो उत्पादन होने की जो अभी संभावना है वो 175 लाख टन की है, यानी कि लगभग 50 लाख टन दाल इस बार हमारे जो डिमांड होगी, हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड होगी, उसकी तुलना में कम होगा। स्वाभाविक है कि यदि सरकार अभी से ध्यान नहीं देगी, तो चूंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो दालों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले के ऑडियो गाइडेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूज में ही वो बात थी कि सरकार ने दालों का आयात करने का फैसला किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। मित्रों, मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि किस तरह से 3 दिन पहले की न्यूज को आज की न्यूज से आप जोड़कर देखेंगे, कल की न्यूज से आप जोड़कर के देखेंगे, और यही क्षमता आप में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे न्यूज हो, चाहे अखबार हो, चाहे ये मेरा ऑडियो गाइडेंस हो, चीजों को एक ही जगह पर आपको उपलब्ध नहीं करा सकता। हाँ, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस की बात अलग है कि वहां एक ही टॉपिक को लेकर के एक ही ढेर सारी चीजें एक जगह पर उपलब्ध करा दी जाती है। मित्रों, इसी न्यूज में एक आयोग की बात बार बार आ रही थी, वो तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है खाद्यान्न का। मैं सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज ये जो आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और ये किस तरह से काम करता है, और इसका अभी तक क्या योगदान रहा है हमारे कृषि के क्षेत्र में, थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ ले लेनी चाहिए। मित्रों, जो दूसरी खबर है वो ललित मोदी के मामले को लेकर है, आप कई दिनों से सुन रहे हैं। अब अगर कंटेंट के रूप में मैं कहूँ, तो आप केवल ये कह सकते हैं कि जो अभी जो सरकार है हमारी, वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के का नारा देकर सत्ता में आई है, और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सरकार के खिलाफ अभी तक सीधे सीधे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग पाया है, जबकि साल भर से ऊपर का वक्त हो गया, और ये कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो कंटेंट है, ये कुछ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि उनका इससे ललित मोदी का इससे रिलेशन था, ललित मोदी का उससे रिलेशन था, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और इसको बार बार उठा रहा है, तो कंटेंट के रूप में आपके ध्यान में थोड़ी सी केवल यही बात रहनी चाहिए। और अभी तक मुझे सच पूछे तो इस मामले में सिविल सर्विस के पॉइंट से कोई बहुत बड़ी बात दिखाई नहीं दे रही है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, एक जो दूसरी खबर थी आंकड़े के रूप में, और वो थी सौर ऊर्जा को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर के। आपको ध्यान होगा कि इस पर भी हम लोगों ने कई बार बातें की हैं, और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो अभी की सरकार है वो ग्रीन एनर्जी की बहुत बड़ी प्रवक्ता है, ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रही है, बहुत जरूरी भी है। और ग्रीन एनर्जी को लेकर के मैंने एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी तैयार किया था, जो फर्स्ट एंड सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को भेजा गया था। उसी के तहत एक आंकड़ा आया है कि सन 2022 तक, यानी कि आने वाले लगभग 7 सालों में, सरकार ने फैसला किया है कि वो 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी, और ये लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये आपके सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र में भी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी ये आंकड़ा काम आएगा। ठीक इसी तरह से जो पर्यावरण संरक्षण है उस क्षेत्र में भी, ये उस टॉपिक में भी ये आंकड़ा आपके काम का आंकड़ा होगा। इसके बाद मित्रों, सबके लिए आवास की बात थी। आप जानते हैं कि ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है, इस योजना की तो आपको अलग से तैयारी करनी ही चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग छोटी सी खबर ये थी कि जो चेक बाउंस हो जाते हैं, उसके उस बाउंस होने के लगभग 18 लाख मामले अभी चल रहे हैं न्यायालयों में। 18 लाख मामले बहुत ज्यादा होते हैं, तो सरकार इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। एक बार अध्यादेश आ जाए तो फिर हम उस पर देखेंगे कि क्या क्या बातें हमारे सिविल सर्विस के पॉइंट से उसमें इंपॉर्टेंट निकल सकती हैं। तो मित्रों, सच पूछे तो AIR न्यूज में इतनी ही बातें थी, कोई खास और नहीं थी। लेकिन अब जो थर्ड स्टेज है, जो अखबारों का स्टेज है दोस्तों, उसमें बहुत ही बम्पर क्रॉपिंग हुई है, मतलब कह लीजिए कि बहुत अच्छी पैदावार हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है। और आज मैं आपको अखबारों की ढेर सारी क्लिपिंग्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। शायद आप थोड़े से दहशत में भी आ जाएं कि इतनी हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन एवरेज के हिसाब से तो बहुत, अगर एवरेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा भी करना चाहूंगा, वह है दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट, जिसका शीर्षक है विषमता बढ़ा रहा है संपत्ति के रिसाव का सिद्धांत। अगर आप पिछले कुछ सालों से, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले अगर आप कुछ सालों के सिविल सर्विस के मेन्स के पेपर उठा करके देखें, जनरल स्टडीज के, तो आप पाएंगे कि आर्थिक उदारीकरण के बाद जो पूरे के पूरे विश्व में जो परिवर्तन आया है या इसके जो प्रभाव हुए हैं, इस पर कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी रूप में हर साल पूछ लिया जाता है, चाहे वो पूंजीवाद के फॉर्म में हो, समाजवाद के फॉर्म में हो, या सीधे सीधे प्रभाव के फॉर्म में हो, किसी न किसी रूप में होता है। पिछले साल भी पूछा गया था, सीधे सीधे पूछा गया था, और अब तो मुझे लगता है कि इस साल इसके पूछे जाने की और अधिक संभावना हो गई है। वो इसलिए दोस्त कि एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी कुल मिलाकर के ये है कि समाज में कई तरह के आर्थिक स्तर के लोग हैं, गरीब से लेकर के और ऊपर धनी वर्ग के लोग। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है टपक टपक कर चीजों का रिस रिस कर नीचे तक पहुंचना। यानी कि मान लीजिए कि आप छत पर पानी डाल दें और पानी वहां जमा रहे, तो वो पानी धीरे 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 टपक कर नीचे तक आ पहुंचेगा। टपक करना कहें रिस करते हैं, टपक टपक करना कहें, दीवारों के सहारे रिस करके वो नींव तक पहुंच जाएगा। इसको अब आप आर्थिक सिद्धांतों पर लागू कर दीजिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर समाज के मान लीजिए कि 10% लोग, 20% लोग, या समाज का जो धनी वर्ग है उसके पास किसी वजह से पैसा आ जाए, धन आ जाए, तो वो इस धन का क्या करेगा? इस धन से फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। यानी कि जो उस धनी आदमी के पास जो पैसा था वो अब इनडायरेक्ट फॉर्म में इस तरह से बेरोजगार या गरीब लोगों तक पहुंच गया। उसके पास पैसा बहुत होगा तो क्या करेगा, वो अपना 25 मंजिला मकान बनवाएगा। 25 मंजिला मकान बनवाएगा, रहे वो चाहे जितने में भी, उस मकान के रख रखाव के लिए फिर 100-200 लोगों को रखेगा तो उनको रोजगार मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उसमें उपभोक्तावाद भी अगर पनपेगा तो वो फिर वो पैसा बाजार में पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि अगर धनी वर्ग के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया और उन के पास पैसा आ गया तो वो पैसा रिस्क कर धीरे धीरे खुद नीचे तक पहुंच जाएगा और देश के आर्थिक विकास को गति मिल जाएगी। और सच पूछिए तो इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा तरजीह भी दी गई। एडम स्मिथ तो इसके समर्थक थे ही, वो तो मानकर के चलते थे कि राज्य को व्यापारिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यापार को खुला छोड़ देना चाहिए, प्रतियोगिता होगी उनके आपस में और विकास देश का होता रहेगा। लेकिन बाद में जब कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पूंजीपति होते हैं वो शोषण पर आधारित, उनका जितना भी लाभ होता है वो लोगों के शोषण पर आधारित होता है, इसीलिए जो अर्थव्यवस्था है उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ये उन्होंने कहा, बिल्कुल उसके विपरीत बात कही। भारत ने इसके बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने समाजवाद का रास्ता अपनाया कि नहीं, हम पूरी तरह से उद्योगों को उद्योगपतियों के लिए खुला भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से राज्यों के नियंत्रण में भी नहीं रखेंगे, तो जिसे हम कहते हैं समाजवाद। तो भारत ने बीच का रास्ता निकाला। अब हुआ क्या दोस्तों, ये सब चलता रहा, लेकिन 1970 के बाद ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से फिर बढ़ने लगा। इसकी बात होने लगी कि नहीं, ये कम्युनिज्म नहीं चलेगा, ये समाजवाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर एक रूप देना था तो इस सिद्धांत को लाना जरूरी था। और 1980 के आसपास, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रीगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने इस सिद्धांत को अपना लिया और उन्होंने सीधे सीधे फिर यह बात कही कि नहीं, राज्य का काम व्यापार करना नहीं होता है, राज्य का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, बाकी काम व्यापारियों को करने दिया जाए। इसका बहुत जबरदस्त असर हुआ। सच पूछे तो मार्गरेट थैचर ने तो उस समय तक ये कह दी, जो हमारे यहां आजकल मिड डे मील है उसी पैटर्न पर ब्रिटेन में उस समय बच्चों को, स्कूल आने वाले बच्चों को मिल्क दिया जाता था, तो उन्होंने बंद करवा दिया, मिड डे मील देना बंद करवा दिया। इसीलिए मार्गरेट थैचर की उस समय आलोचना करते हुए लोगों ने उनको नाम दिया था मिल्क स्नेचर, मिल्क स्नेचर, जो जिसने दूध को खींच लिया, वापस ले लिया। तो दोस्तों ये जो रेनॉल्ड रेगन हुए और मार्गरेट थैचर हुए, सच पूछे तो इन्हीं के सिद्धांत का असर हुआ कि 1990 तक आते आते पूरी दुनिया में ये सिद्धांत फैलने लगा। और आज जो आप आर्थिक उदारीकरण का सिद्धांत देख रहे हैं ये सच पूछे तो इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी की देन है। लेकिन अभी जो बात आई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इस साल के लिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, वो ये कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अभी एक स्टडी कराई और उस स्टडी में जो बात आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। उस स्टडी में मित्रों ये शो किया गया है कि यदि आबादी, जनसंख्या के ऊपर के जो 20% लोग हैं, जो सबसे धनी लोग हैं, यदि इनकी आय में 1% की वृद्धि होती है तो आने वाले 5 सालों में अर्थव्यवस्था में मात्र 0.08% की वृद्धि होती है, विच इज निग्लिजेबल। और ठीक इसके विपरीत हमारे समाज का जो बिल्कुल नीचे का तबका है, जो गरीब तबका है, यदि इसके 20% लोगों में 1% आय की वृद्धि कर दी जाए तो हमारी जो आर्थिक वृद्धि होगी वो 0.38% होगी। इसका मतलब हुआ कि यदि देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें नीचे के लोगों को ऊपर लाना होगा। तो यहां ट्रिकल डाउन का सिद्धांत बिल्कुल गलत ठहरता है। मित्रों ये जो आंकड़े हैं, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप बार बार दोहराइएगा ताकि इसमें कोई गलती न हो। ये जो स्टडी है ये बहुत लंबे समय तक सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में आपके काम आएगी। और आप देखेंगे कि ये तो अभी स्टडी आई है, स्टडी की रिपोर्ट आई है, अब किस तरह से इस पर बहस चलेगी, आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को इसी अध्ययन के आधार पर बदलने को बाध्य हूं। मित्रों, इस पर बहुत बात की जा सकती है, बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इस पर लंबी बातें करूं, लेकिन हो सकेगा तो हम कभी इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है फ्रेंड्स। और ढेर सारी क्लिपिंग्स आज मैं आप लोगों को नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड करने जा रहा हूं, उसमें से ज्यादातर क्लिपिंग्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है, जो आपको क्लिपिंग्स में भी मिलेगी मित्रों, वो है चार्ल्स कोरिया का निधन। भोपाल के स्टूडेंट्स चार्ल्स कोरिया के बारे में बहुत जानते होंगे, क्योंकि भारत भवन जो बिल्डिंग है चार्ल्स कोरिया ने बनवाया है, और भी उन्होंने दूसरी बिल्डिंग्स, मध्य भोपाल का जो विधानसभा का भवन है जिसके उद्घाटन सत्र में मुझे जाने का मौका भी मिला था राष्ट्रपति जी के साथ, वो चार्ल्स कोरिया ने बनवाया है। जयपुर के लोग जानते होंगे कि जवाहर कला केंद्र जो जयपुर का है वो चार्ल्स कोरिया ने बनवाया है। दिल्ली के लोग शायद जानते होंगे, वहां जो जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग है वो चार्ल्स कोरिया ने बनवाया। ब्रिटिश काउंसिल की जो बिल्डिंग है चार्ल्स कोरिया की बनवाई हुई है। बहुत से ऐसे बिल्डिंग्स हैं चार्ल्स कोरिया ने बनवाए हैं, बहुत बड़े हमारे आर्किटेक्ट रहे हैं, मतलब 20वीं सदी के महानतम आर्किटेक्ट वास्तुविदों में उनका नाम था। वो कल नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, और आप सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सिविल सर्विस की दृष्टि से दोस्तों, चूंकि आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर आपका हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि चार्ल्स कोरिया के वास्तुविद की क्या विशेषताएं रही हैं, वो किन सिद्धांतों को लेकर के मकान बनाया करते थे, इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रखकर मैंने चार्ल्स कोरिया पर 2-3 आर्टिकल दिए हैं, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, जिसमें लगभग लगभग उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई हैं। तो मित्रों, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और बाकी आर्टिकल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, अब उनकी चर्चा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हालांकि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे और उन्हें समझ भी लेंगे, और मैं समझता हूं कि अभी तक इतनी कैपेसिटी तो आप लोगों में आ भी गई है दोस्तों। और मित्रों, अब अंत में मैं आता हूं ईमेल पर, और एक बार फिर से मैं हसद अहमद साहब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो कतर के दोहा में रहते हैं, उन्होंने मेल लिखा है। हसद साहब, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे शब्द हमारी टीम के लिए लिखकर भेजे। मित्रों, बहुत से मेल आए हैं, उन सभी मित्रों को जिन्होंने मेल लिखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इनमें से कुछ के नाम हैं, शिराज जाफरी जो नोएडा से हैं, किरण विश्वकर्मा, सत्येंद्र कुमार वर्मा मुरादाबाद से हैं, शिवानंद सारस्वत पीलीबंगा से हैं, गोविंद, अशोक सिंह, आशीष कुमार बाराबंकी से, और अविचल कुमार बाजपट्टी बिहार से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।